आस्था बिना कुछ सोचे समझे अपना बैग हाथ में लेकर दरवाजे से बाहर जाने लगी। अब आगे, और दादाजी का दिल अचानक ही दर्द से भर उठा था और वे तुरंत ही बेड के नीचे जमीन पर बैठ गए थे। आस्था कमरे से तो बाहर निकल गई थी, अब सीढ़ियों पर उतरते वक्त उसका दिल भारी हो रहा था, क्योंकि इस घर में उसने अपनी जिंदगी के काफी खूबसूरत पल बिताए थे। अरमान से उसे गहरी और शदीद मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन अब अरमान का सच सामने आने के बाद आस्था को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसे बस अब जल्द से जल्द कहीं दूर चले जाना चाहिए। इसीलिए वो कहीं दूर चले जाना चाहती थी जहां पर कोई भी उसके आसपास ना रहे। वो जैसे ही नीचे उतरकर दरवाजे की ओर जाने लगी, ठीक उसी वक्त टाइगर, जिसे अरमान ने आस्था को लेने के लिए भेजा था, उसके सामने आ गया था। अब टाइगर को अपने सामने देखकर आस्था ने उसे किसी तरह का कोई शब्द नहीं बोला और उसके ठीक बराबर में से होकर जाने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त टाइगर की ठंडी आवाज सुनाई दी, क्वीन, आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा, किंग आपको बुला रहे हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये आवाज सुनी, उसके कदम एक पल के लिए रुक गए थे, लेकिन अगले ही पल टाइगर की बात को इग्नोर करते हुए आस्था आगे जाने लगी। लेकिन तुरंत टाइगर आस्था के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को फैलाकर खड़ा हो गया और उसे रोकते हुए बोला, आप यहां से कहीं नहीं जा सकती हैं, किंग का ऑर्डर है, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। अब आस्था गुस्से से घूर कर टाइगर को देखने लगी थी और तभी अचानक आस्था थोड़ा सा आगे बढ़ी और खींचकर एक चांटा टाइगर के मुंह पर दे मारा था। हालांकि आस्था के चांटे का असर टाइगर पर रत्ती भर भी नहीं हुआ था, लेकिन आस्था उसे उंगली दिखाते हुए नफरत भरे अंदाज में बोली, मेरा तुम्हारे किंग से कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हारे किंग की कोई गुलाम नहीं हूँ कि मैं उसकी कोई बात मानूंगी, समझे तुम। इस वक्त आस्था के दिलो दिमाग में रह रहकर सिर्फ अपने परिवार की मौत, अपने माता पिता की मौत, इतना ही नहीं उसे उसके पालने वाले माता पिता की मौत और साथ ही साथ डेविल किंग ने आज तक जितनी जानें ली थीं, वो सारी ही उसके दिमाग में चल रही थीं। तो उसे रह रहकर यही लग रहा था कि इन सब का जिम्मेदार अगर कोई है तो उसका अपना पति अरमान सिंघानिया है, इसीलिए आस्था अरमान से बहुत ज्यादा नाराज थी। वहीं आस्था के इस तरह से बोलने पर टाइगर की आंखों में खून उतर आया था, क्योंकि अरमान के अलावा उसने आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की थी और अरमान का हर हुक्म उसके लिए पत्थर की लकीर था। अब टाइगर एक बार फिर आस्था की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, क्वीन, आप मुझे मजबूर मत कीजिए, किंग का ऑर्डर है, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन आस्था उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगी, मानो उसे कहना चाह रही हो कि क्या तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल जब टाइगर को इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया कि उसकी क्वीन यानी कि आस्था उसकी कोई बात नहीं मानने वाली है, तभी अचानक टाइगर आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आस्था को गोद में उठाने का क्या नतीजा हो सकता है। एक बार उसने गलती से आस्था को छू लिया था, तब उसे अपने हाथ को सजा देनी पड़ी थी, लेकिन आज तो उसने आस्था को गोद में उठा लिया था, लेकिन उसके लिए अरमान का हुक्म हर हाल में पूरा करना जरूरी था। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। अब आस्था झटपटा रही थी, लेकिन टाइगर उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने सीधा ले जाकर आस्था को कार में बैक सीट पर डाल दिया था और रिमोट कंट्रोल का यूज करते हुए कार के दरवाजे और शीशे के दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया था, ताकि आस्था कार से बाहर निकलने की कोशिश न करे, और टाइगर सीधा हॉस्पिटल की ओर रवाना हो चुका था। दूसरी ओर वहीं वंशिका, जो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी, काफी देर से उसे आस्था और दादाजी की कोई आवाज या कोई भी बात सुनाई नहीं देती थी, तो इसीलिए आस्था से मिलने के इरादे से वंशिका जल्दी से उसके पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस कमरे में गई और दादाजी के पास गई, तो उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। दादाजी आस्था की बातों को दिल से लगा बैठे थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और वे उनके सीने में लगातार दर्द उठ रहा था। जैसे ही वंशिका ने ये देखा तो उसकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि दादाजी को सीधे सीधे हार्ट अटैक के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। अब वंशिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, इसीलिए फटाफट से वंशिका ने नौकरों की मदद से दादाजी को पास के अस्पताल में एडमिट करने के लिए बोल दिया था। हालांकि घर में एक मिनी हॉस्पिटल था, लेकिन वंशिका को उस बारे में नहीं पता था। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त खामोशी से एक टक हॉस्पिटल की सीलिंग को घूर रहा था और रह रहकर उसके दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि उसकी ऐसी कंडीशन पर उसकी पत्नी उसके साथ क्यों नहीं है, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। अरमान आस्था के लिए पूरी तरह से पागल था और आस्था का इस तरह से इग्नोर करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो अब सिर्फ आस्था का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। वहीं ध्रुव, आहान, साथ ही साथ सुमित, आकाश, देव, मारिया सब समझ चुके थे कि इस वक्त अरमान के सामने रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अरमान इस वक्त किसी की शक्ल देखना चाहता है सिवाय आस्था की शक्ल के। इसीलिए बारी बारी से सब अरमान को ख्याल रखने को कहकर वहां से बाहर निकल गए थे। वहीं दूसरी ओर जब वे लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर रश्मि, राधिका, साथ ही साथ रौनक नानी माँ को लिए खड़े हुए थे। अब उन लोगों को देखकर सुमित घूरकर राधिका को देखते हुए बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तब सुमित की बात का जवाब रश्मि ने देते हुए बोली, नानी माँ अरमान से मिलना चाहती हैं। अब सब लोगों का ध्यान नानीमा पर जैसे ही गया तो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि जब उन्होंने पहले उन लोगों को अचानक देखा तो उनका ध्यान नानीमा पर नहीं गया था। अब नानीमा को देखकर जल्दी से वे लोग खुशी से उन्हें गले से लगने लगे। वहीं आहान की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि आहान पहले ही नानीमा से मिल चुका था, लेकिन नानीमा को ठीक ठाक देखकर न जाने क्यों उसे पॉजिटिव फीलिंग आने लगी थी कि अब सबकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि नानीमा एकदम जादू की छड़ी के जैसी थी। जहाँ भी जाती थी सब ठीक कर दिया करती थी। आहान कुछ ज्यादा ही नानी से अटैच्ड हो गया था। अब रौनक आहान को इस तरह से नानीमा से चिपकते हुए देखकर झल्ला उठी थी और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, इस छछुंदर को कोई काम नहीं है क्या? जब देखो हर किसी से भी चिपकता ही रहता है। अब ये बात आहान ने सुन ली थी और वो घूर कर रौनक को देखने लगा था और आंखों ही आंखों में मानो उसे कहना चाह रहा हो, बोल तो ऐसे रही है जैसे ये खुद मुझे नहीं चिपकती है, भूल गई वो ड्रग्स वाली रात? अब जैसे ही आहान के इशारों का मतलब रौनक को समझ में आया, वो शर्म से ज्यादा लाल हो गई थी और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आहान तिरछा सा मुस्कुराकर रह गया था, क्योंकि आहान को आज भी वो रात अच्छी तरह से याद थी जब रौनक ने उसे दिल खोलकर प्यार किया था। कहीं ना कहीं वो आहान की जिंदगी की वो सबसे खूबसूरत रात थी। हालांकि वो सब कुछ जो हुआ था सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में हुआ था, लेकिन आहान का दिल बार बार अब ये करने को चाह रहा था और ये बात वो रौनक से कह नहीं पा रहा था। अब रौनक के जाने के बाद आहान ने नानी माँ के गाल पर किस करते हुए बोला, आई मिस यू सो मच नानी माँ। अब नानी माँ आहान का इतना प्यार पाकर उनकी आंखें छलक उठी थी। अगले ही पल सुमित, आकाश, ध्रुव, बाकी सभी नानी माँ के आगे जाकर उनका आशीर्वाद लेने लगे थे और सभी बारी बारी से उनके गले से लगने लगे थे। ठीक उसी वक्त नानी माँ बोली,
मैं दामाद जी से मिलना चाहती हूँ। तभी सबने एक दूसरे की शक्ल को सवाल भरी नजरों से देखा, क्योंकि अरमान तो उस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके गुस्से को अगर कोई शांत कर सकता था तो वो थी सिर्फ आस्था। लेकिन फिलहाल वे लोग नानी माँ को मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि नानी माँ खुद इतनी बड़ी बीमारी से उठी थीं। फिलहाल आकाश ने आंखों ही आंखों में रश्मि को इशारा किया कि वो अभी के लिए नानी माँ को यहाँ से ले जाए। तब रश्मि आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए जल्दीबाजी में नानी माँ से बोली, नानी माँ अभी अरमान आराम कर रहा है और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अभी भी उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है, तो जब वो नींद से जाग जाएगा तब आप उससे मिल लेना। तब तक आपकी तबीयत भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी और आप भी अब उठे हुए भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको भी अभी आराम की सख्त जरूरत है। ये बोलकर रश्मि ने अपनी बातों में नानी माँ को फंसा लिया था और सीधा उन्हें एक बार फिर आराम करने के लिए रूम में वापस ले गई। वहीं दूसरी ओर आस्था बार बार टाइगर को गुस्से से कोस रही थी और उसे कार से उतर जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि आस्था इस वक्त अरमान को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती थी। लेकिन टाइगर तो उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इतना ही नहीं, उसने कार के पार्टीशन ऑन कर दिए थे, जिसकी वजह से आस्था के चिल्लाने की कोई भी आवाज़ वो फिलहाल सुन नहीं पा रहा था और सीधा हॉस्पिटल के सामने उसने कार रोक दी थी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।